المسیح پر ایمان، یہ کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل 12 آیت 37 سے 50 تک۔ جب عیسی مسیح آخری بار یروشلم میں داخل ہوا تو اس کا پرجوش استقبال ہوا، لوگ خوشی منانے لگے۔ انہیں لگا کہ عیسی مسیح بادشاہ بن کر دشمن کو ملک سے ہٹا دے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ میری راہ حلیمی کی راہ ہے۔ اس کے بعد وہ چھپ گیا۔ یوں اس کی کھلے عام خدمت اختتام پر پہنچا۔ اس وقت سے وہ صرف اپنے شاگردوں کے محدود دائرے میں تعلیم دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ یوحنا رسول یہ آخری باتیں پیش کرتا ہے، وہ مسیح کی آمد کا مقصد اور کلام تھوڑے لفظوں میں دہراتا ہے۔ یوحنا رسول اس جگہ پر یہ خلاصہ کیوں پیش کرتا ہے؟ یوحنا رسول ہمیں صاف دکھانا چاہتا ہے کہ عیسی مسیح پر ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ پہلی بات، عیسی مسیح کو حقیر مت جانو۔ عیسی مسیح کو حقیر مت جانو۔ عیسی مسیح نے یہ تمام الہی نشان لوگوں کے سامنے ہی دکھائے، پھر بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے۔ کتنی بڑی ٹریجیڈی! اس نے اتنے معجزے کر دکھائے تھے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہ لائے۔ سب اس کا کلام سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ ان کے دینی رہنما تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہ لائے۔ ایمان نہ لانے کی کیا وجہ تھی؟ ایمان نہ لانے کے پیچھے ایک روحانی حقیقت تھی۔ صدیوں پہلے یسعیاہ نبی فرما چکا تھا، اے رب، کون ہمارے پیغام پر ایمان لایا، اور رب کی قدرت کس پر ظاہر ہوئی؟ یسعیاہ کی کتاب 53 پہلی آیت۔ یسعیاہ نبی کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کے پیچھے روحانی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اکثر لوگ خدا کے کلام پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب لوگ خدا کا کلام حقیر جانتے ہیں تو کیا خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اسے ضرور فرق پڑتا ہے۔ یوحنا رسول یسعیاہ نبی کا حوالہ لے کر فرماتا ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو بے حس کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے دل سے سمجھیں، میری طرف رجوع کریں اور میں انہیں شفا دوں۔ یسعیاہ کی کتاب 6 آیت 9 اور 10۔ یسعیاہ نبی کے مطابق جب کوئی خدا کا کلام حقیر جانتا ہے تو خدا کا کیا جواب ہے؟ خدا ہونے دیتا ہے کہ ایسا شخص روحانی باتوں کے لیے اتنا اندھا اور بے حس ہو جائے کہ وہ آئندہ شاید ہی توبہ کر کے روحانی شفا پائے۔ یوحنا رسول جو یسعیاہ نبی کی باتیں دہراتا ہے، لوگوں کا کفر کیوں اتنی سختی سے پیش کرتا ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ ہم عیسی مسیح کا کلام اور کام حقیر جاننے سے اس کی نجات سے محروم رہ جائیں، اس نجات سے جو صرف اور صرف عیسی مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے۔ اب وہ کفر کے برے نتیجوں پر اور زور دیتا ہے۔ یوحنا رسول فرماتا ہے، یسعیاہ نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ اس نے عیسیٰ کا جلال دیکھ کر اس کے بارے میں بات کی۔ یوحنا کی انجیل 12 آیت 41۔ یسعیاہ نبی تو کئی صدیوں پہلے مر چکا تھا، اس نے کس طرح عیسیٰ مسیح کا جلال دیکھ لیا تھا؟ یوحنا رسول کا کہنا ہے کہ خدا اور عیسیٰ مسیح کا جلال ایک ہی ہے۔ جہاں خدا باپ ہے، وہاں خدا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ جب یسعیاہ نبی نے رویا میں خدا کا جلال دیکھا تو اس نے عیسیٰ مسیح کا جلال بھی دیکھا۔ یوں مسیح کا جلال نبی پر ظاہر ہوا۔ تب خدا نے فرمایا، میرا پیغام سنا کر तू लोगों के दिलों को बेहिस कर डालेगा। नबी ने पूछा, मैं कब तक कलाम सुनाऊं? उसे जवाब मिला, उस वक्त तक कि मुल्क के शहर वीरान और सुनसान, उसके घर गैर आबाद और उसके खेत बंजर ना हो। यसाया की किताब 6:11। ये पेशगोई नबी के जीते जी पूरी हुई। इसराइल बर्बाद हुआ और कौम मुख्तलिफ मुल्कों में तितर बितर हुई। यूहन्ना रसूल इस हवाले से क्या कहना चाहता है? जिस तरह इसराइली कौम ने यसाया नबी का कलाम रद्द किया था, उसी तरह अक्सर लोगों ने ईसा मसीह का कलाम रद्द किया है। यसाया नबी का पैगाम रद्द करने से लोगों के दिल रूहानी सच्चाइयों के लिए अंधे हो गए और नतीजे में पूरा मुल्क तबाह हुआ। इसी तरह ईसा मसीह का कलाम रद्द करने से लोगों के दिल रूहानी सच्चाइयों के लिए अंधे हो गए और बाद में पूरा मुल्क बर्बाद हुआ। साथ साथ बेशुमार यहूदी मुख्तलिफ मुल्कों में तितर बितर हुए। क्या आप समझते हैं कि ईसा मसीह एक अजीम नबी है और बस? मेरे अजीज, ये काफी नहीं है। इससे नजात नहीं मिलेगी। इससे आप गुनाह के बुरे नतीजों से नहीं बचेंगे। इससे आप खुदा की नजर में मंजूर नहीं हो जाएंगे। आप जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यूहन्ना रसूल हमें एक और किस्म की बेईमानी से भी खबरदार रखना चाहता है। वो फरमाता है कि अपना ईमान छुपाए मत रखो, अपना ईमान छुपाए मत रखो। पूरी कौम ने तो ईसा मसीह को रद्द नहीं किया था। काफी लोग उस पर ईमान रखते थे। कुछ रहनुमा भी उनमें शामिल थे, हालांकि वो दूसरों के बायस ये बात खुले तौर से नहीं कहते थे। ये रहनुमा क्यों खुले तौर से नहीं कहते थे कि हम ईमान रखते हैं? यूहन्ना रसूल फरमाता है कि वो नहीं चाहते थे कि उन्हें यहूदी जमात से निकाला जाए। वो अल्लाह की इज्जत की निस्बत इंसान की इज्जत को ज्यादा अजीज रखते थे। इस बात से हम क्या सीखते हैं? उन लोगों जैसे मत बनो जो ईमान तो लाए थे, फिर भी ये बात छुपाए रखते थे। जब हम अपना ईमान छुपाते हैं तो हम ईसा मसीह को दुख पहुंचाते हैं। यूहन्ना रसूल फरमाता है कि ये नहीं चलेगा कि तुम अल्लाह की इज्जत की निस्बत इंसान की इज्जत ज्यादा अजीज रखो। अब तक यूहन्ना रसूल ने खुले तौर से ईमान रखने पर जोर दिया, लेकिन ईसा मसीह पर ईमान है क्या? इसका जवाब वो अब देता है। पहले, नूर पाकर तारीकी से बचो, नूर पाकर तारीकी से बचो। ईसा मसीह ने फरमाया, मैं नूर की हैसियत से इस दुनिया में आया हूं ताकि जो भी मुझ पर ईमान लाए वो तारीकी में ना रहे। यूहन्ना की इंजील 12:46। नूर का अंधेरे पर क्या असर होता है? जहां नूर की तेज रोशनी फैलती है वहां अंधेरा दूर हो जाता है। जिसके दिल में नूर बसने लगता है उससे अंधेरा दूर हो जाता है। तो नूर किस तरह मिलता है? नूर सिर्फ ईसा मसीह पर ईमान लाने से मिलता है। वो खुद नूर है। उस पर ईमान क्यों इतना ठोस है? आयत 44 में लिखा है, ईमान इसलिए ठोस है कि उसे खुदा बाप से भेजा गया है। जो उस पर ईमान रखे वो खुदा बाप पर ईमान रखता है। गर्ज, ईसा मसीह खुदा बाप से भेजा गया नूर है और सिर्फ उसे पाने से इंसान तारीकी से बचेगा। यूं पहला कदम यह है कि हम इलाही नूर यानी मसीह को पाकर उससे भर जाएं। तो हम किस तरह ये नूर पा सकते हैं? इसका सादा सा जवाब है, हम ये नूर इस तरह पा सकते हैं कि हम ईसा मसीह और उसका कलाम कबूल करें। तब ये नूर हमारे अंदर फैलने लगता, चमकने दमकने लगता है। दूसरी बात, उसे देखते रहो, उसे देखते रहो। ईसा मसीह ने यह भी फरमाया, जो मुझे देखता है वो उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना की अंजील 12 आयत 45। हम किस तरह ईसा मसीह को देख सकते हैं? ईसा मसीह पर ईमान लाने से वो हमारे दिलों में बसने लगता है, तब हम ईमान में उसे देख सकते हैं, और उसे देखकर हम खुदा बाप को भी देख सकते हैं। हम मसीह के जरिए खुदा बाप को क्यों देख सकते हैं? हम ईसा मसीह के जरिए खुदा बाप को इसलिए देख सकते हैं कि वह खुदा का नूर है, जो इस दुनिया में भेजा गया ताकि हमें रोशन करके बचाए। खुदा बाप सूरज जैसा है, जबकि ईसा मसीह उसकी रोशनी है, उसका नूर जो इस दुनिया में आ गया है। हम सूरज को सिर्फ नूर के जरिए देख सकते हैं। गर्ज ईमानदार को क्या करना है? ईमानदार को बस मसीह को देखता रहना है, जो नूर है। मसीह को देखने से उसकी जिंदगी नूर और पाकीजगी से भर जाएगी। तीसरी बात, उसकी सुनते रहो, उसकी सुनते रहो। इंसान अपनी आंखों से देखता है, देखने से वो खुदा का नूर पाता है। अब ईसा मसीह सुनने की बात भी छेड़ता है। इंसान अपने कानों से सुनता है, तब जवाब में चलने लगता है। ईसा मसीह ने फरमाया, जो मेरी बातें सुनकर उन पर अमल नहीं करता, मैं उसकी अदालत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दुनिया की अदालत करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे नजात देने के लिए। तो भी एक है जो उसकी अदालत करता है। जो मुझे रद्द करके मेरी बातें कबूल नहीं करता, मेरा पेश किया गया कलाम ही कयामत के दिन उसकी अदालत करेगा। यूहन्ना की अंजील 12 आयत 47 और 48। हम तो बहुत कुछ सुनने के आदि हो गए हैं। हमारे हुक्मरान बड़े बड़े वादे करते हैं जो बाद में अधूरे रह जाते हैं। इंटरनेट के दौर में हर एक ने अपने आप को अच्छी तरह पेश करना सीख लिया है। हर एक ने दूसरों को मनवाने का गुर अपना लिया है। बहुत कुछ सुनने में आता है जो हम सीधे ताक पर रखकर भूल जाते हैं, और सच कहें, अगर ऐसे ना करते तो बार बार मायूस हो जाते। इसलिए जरूरी है कि हम मसीह की हदायत पर ध्यान दें कि मेरी सुनो, मतलब है मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करो। जिसके अंदर नूर है वो खुद ब खुद उसकी सुनता रहेगा, वो ये बातें महफूज रखेगा और उनका उसकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ेगा। ईसा मसीह की बातें ताक पर रखकर छोड़ेंगे तो समझ लो कि आप नहीं बचेंगे। आप क्यों नहीं बचेंगे? क्या ईसा मसीह ने नहीं फरमाया था कि मैं अदालत करने नहीं आया? जरूर, बात यह है कि उसका कलाम ही आपकी अदालत करेगा। उसका कलाम रद्द करने से आपकी अदालत हो चुकी होगी, लेकिन क्या हम उसकी सारी बातों पर अमल कर पाएंगे? क्या कुछ ना कुछ अधूरा नहीं रहेगा? बेशक, बात ये नहीं है। अमल करने के पीछे जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब महफूज रखना भी है। अमल करने का पहला कदम मसीह की बातें अपने दिल में महफूज रखना है। जब हम नूर की धूप सेंकते रहते हैं तो उसका कलाम भी हमारे दिल में बैठकर फल लाता है। बड़ी बात यह नहीं कि हम हर बात पर पूरे उतरें। बड़ी बात यह है कि ईसा मसीह, जो हमारा नूर है, हमारे अंदर बसे, कि वही अपनी बातें हरकत में लाए। वो हमारा अजीम उस्ताद है और वो जानता है कि हम उसके कमजोर शागिर्द हैं। बड़ी बात यह है कि वो हमारा हाथ थामे साथ चले। क्या नूर आपके दिल में बसा हुआ है? क्या वो आपका हाथ थामे आपके साथ चल रहा है? यूं योहन्ना रसूल हमें आगाह करता है कि ईसा मसीह को हकीर मत जानो, बल्कि उस पर ईमान लाओ और ये ईमान छुपाए मत रखो, क्योंकि ईसा मसीह नूर है और नूर की फितरत ये है कि वो फैल जाए। ईमानदार को क्या करना है? पहले उसे देखते रहो ताकि उसका नूर आप में फैलता जाए, आप में चमकता दमकता रहे। दूसरे, उसकी आवाज सुनकर उसकी राहों पर चलते रहो। सबसे बड़ी बात ये कि उसका हाथ थामे रखो, तब जन्नत की राह यकीनी है। हकीकत में ईसा मसीह पर ईमान सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम है। उस पर ईमान सबसे मुश्किल काम क्यों है? जब हम उसके शागिर्द बन जाते हैं तो वो चाहता है कि हम अपना ईमान छुपाए न रखें, साथ साथ वो चाहता है कि हम उसकी राह पर चलें, मतलब है मोहब्बत की राह पर, हलीमी की राह पर। लेकिन दूसरी तरफ उस पर ईमान सबसे आसान काम भी है। उस पर ईमान सबसे आसान काम क्यों है? हमें सिर्फ उस पर ईमान लाना है जो नूर है, तब वो हमारे अंदर फैलकर हमें अपनी मोहब्बत से भर देगा, हमारा हाथ थामे हमारे साथ चलेगा। अदालत के दिन जब उसका कलाम हमारा सामना करेगा तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारे अंदर बसने वाला नूर हमें बचाए रखेगा, वही हमें जन्नत तक पहुंचाएगा। योहन्ना की अंजील 12 आयत 37 से 50 तक। अगरचे ईसा ने ये तमाम इलाही निशान उनके सामने ही दिखाए तो भी वो उस पर ईमान न लाए। यूं यसाया नबी की पेशगोई पूरी हुई, ए रब, कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया और रब की कुदरत किस पर जाहिर हुई? चुनांचे वो ईमान न ला सके, जिस तरह यसाया नबी ने कहीं और फरमाया है, अल्लाह ने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को बेहिस कर दिया है, ऐसा न हो कि वो अपनी आंखों से देखें, अपने दिल से समझें, मेरी तरफ रुजू करें और मैं उन्हें शिफा दूं। यसाया ने ये इसलिए फरमाया क्योंकि उसने ईसा का जलाल देखकर उसके बारे में बात की। तो भी बहुत से लोग ईसा पर ईमान रखते थे, उनमें कुछ रहनुमा भी शामिल थे, लेकिन वो इसका अलानिया इकरार नहीं करते थे, क्योंकि वो डरते थे कि फरीसी हमें यहूदी जमात से खारिज कर देंगे। असल में वो अल्लाह की इज्जत की निस्बत इंसान की इज्जत को ज्यादा अजीज रखते थे। फिर ईसा पुकार उठा, जो मुझ पर ईमान रखता है वो न सिर्फ मुझ पर बल्कि उस पर ईमान रखता है जिसने मुझे भेजा है, और जो मुझे देखता है वो उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं नूर की हैसियत से इस दुनिया में आया हूं ताकि जो भी मुझ पर ईमान लाए वो तारीकी में ना रहे। जो मेरी बातें सुनकर उन पर अमल नहीं करता मैं उसकी अदालत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दुनिया की अदालत करने के लिए नहीं आया बल्कि उसे नजात देने के लिए। तो भी एक है जो उसकी अदालत करता है, जो मुझे रद्द करके मेरी बातें कबूल नहीं करता, मेरा पेश किया गया कलाम ही क़यामत के दिन उसकी अदालत करेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने बयान किया है वो मेरी तरफ से नहीं है, मेरे भेजने वाले बाप ही ने मुझे हुक्म दिया कि क्या कहना और क्या सुनाना है, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म अबदी जिंदगी तक पहुंचाता है। चुनांचे जो कुछ मैं सुनाता हूं वही कुछ है जो बाप ने मुझे बताया है।